हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 8, 9 और 10। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं केशं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वरिकीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमत्वमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्म्यतमिदम् तथा ग्रह न परह। करारिविन्दे न पदारिविन्दं मुखारिविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटि शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे बिभस्म मृत्युमेतदेव गोविन्द धाम धर्माधवीति। व्रजीवसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरम्। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् चोराज्ञगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि। वंशी क्षित करा नवनीरधाभा पीतांबर धरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात परम किमपि तत्व अहम् न जानि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिवि स्तवे वेदी सांगपत क्रमोपनिषदि गायन्ति यम सामघा ध्यानावस्थित गतिन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा दीवाय तस्मै नमः मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन्दीनतारणम् ग्रंथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 8। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथनो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपत्कणात् विषाज्ञादि मूषिता यत्समाकृता अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपत्कणात् विषाज्ञादि मूषिता यत्समाकृता मूषिता यत्समात्रिका अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपत्कणात् विषाज्ञादि मूषिता यत्समात्रिका। तो अब जैसे ही विदुर महाराज आए थे उनको बहुत ही सुंदर स्वागत किया युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी का। उनको बहुत सुंदर भोजन दिया, आसन दिया, उन्होंने विश्राम कर लिया। वास्तव में आए तो वो अपने भाई के, अपने ज्येष्ठ भ्राता के कल्याण करने के लिए थे, क्योंकि वो जानते थे कि धृतराष्ट्र महाराज का उद्धार करना पड़ेगा और बाकी जो यहाँ पर पांडव हैं, युधिष्ठिर आदि, वो तो सब भगवान के परम भक्त हैं, परम प्रेमी हैं, भगवान के परिकर हैं, वो तो भगवान के पास जाएंगे ही, परंतु हमारा भाई जो धृतराष्ट्र यहाँ पर बैठा हुआ है उसकी दुर्गति होगी। धृतराष्ट्र अधोगति को चला जाएगा तो एक तो उन्होंने जीवन भर भक्तों को कष्ट दिया, मतलब जो भगवान के भक्त हैं ये पांडव, उनको कष्ट दिया, भगवान का भी अपमान किया। तो इस कल्पना से विदुर जी बहुत दुखी थे और विदुर जी इसीलिए यहाँ पर आए थे। लेकिन फिर भी इतने 35 सालों के बाद जब विदुर जी आए थे राजमहल में तो सब बहुत ही सुंदर रीति से सबने उनका स्वागत किया और उनको जितना भी मान सम्मान दिया गया वो सब सुखपूर्वक उसे स्वीकार किया, जो भी भोजन इत्यादि, क्योंकि उनका अपना घर था। तो जैसे हमने कल पढ़ा तम भुक्तवंतम विश्रांतम
आसीनं सुखमासने प्रश्यामनतो राजा प्राहतेषां च शृण्वतां।
कि फिर जब उन्होंने विश्राम कर लिया, फिर जब उठे तो एक बहुत ही सुंदर आसन पर उनको बिठाया गया और फिर युधिष्ठिर महाराज ने उनसे बात करना प्रारंभ किया, जिसको सारे लोग श्रवण कर रहे थे। अब यहाँ पर एक कल्पना की जा सकती है कि शायद धृतराष्ट्र महाराज यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि अभी वो ऐसी बातें करेंगे उनसे, तो हो सकता है धृतराष्ट्र महाराज उस रूम में नहीं हो। लेकिन अगर होंगे भी तो भी अब तो उनके बेटे बेटे कोई है ही नहीं उनका साथ देने के लिए। तो अभी सुना हो या ना सुना हो, बहरहाल यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सारे लोग सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा अपि स्मरथ नो युष्मत्। युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, पूछा उनसे, पहला प्रश्न किया, अपि स्मरथ नो मतलब हमको युष्मत्, आपने आप इतना समय नहीं यहाँ पर नहीं थे, यहाँ पर इतना बड़ा युद्ध हुआ, क्या कभी आपने हमारा स्मरण किया? मतलब बहुत ही दीन भाव से वो अपने चाचा जी से पूछ रहे हैं, क्योंकि ये शास्त्र भी कहता है कि जिसका हम पालन करते हैं, जब हम उससे दूर हो जाते हैं तो उसके बारे में हमें सोच आती है, हम उसका उसको याद करते हैं। तो आगे वो कहते हैं पक्षत छाया समेधितान। पक्षत मतलब जो पक्षी होते हैं, तो उसमें जो मादा पक्षी होती है वो जब अंडा देती है तो उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ती है ना, तो सारा टाइम उसी के ऊपर बैठी हुई होती है। यदि कोई उसके पास आता भी है तो भी फड़फड़ा कर वो अपने अंडों की रक्षा कर रही होती है कि भले मुझे कुछ कर दो लेकिन मेरे अंडों को कोई क्षति मत पहुंचाना। इसको बोलते पक्षत छाया। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि आपने तो जिस प्रकार पक्षी अपने अंडों की सुरक्षा करता है, उसी प्रकार आपने समेधितान आपके द्वारा हम पाले गए हैं, आपके द्वारा हमारी रक्षा उसी प्रकार हुई है जिस प्रकार पक्षी अपने अंडों की रक्षा करता है। मतलब पांडव जब छोटे थे, जब उनके पिताश्री की मृत्यु हो गई थी तो उनके साथ की कोई भी नहीं था। धृतराष्ट्र महाराज के सारे पुत्र जो थे वो पांडवों को मारने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते थे, इसलिए वे कह रहे विपत गणात, विभिन्न प्रकार की विपत्तियां तो कंटिन्यूस हमारे पास आती रहती थी, विष अग्नि आदि, मतलब कभी विष के रूप में कभी अग्नि के रूप में वो विपत्तियां आती जा रही थी, और मोचिताम आपने उनसे हमें बचाया, न केवल हमारी रक्षा की परंतु यत समात्रिका यानी कि हमारी माता जी कुंती वो भी सदैव दुख में रहती थी हमारे साथ, उनको भी कष्ट मिलता था और आप सदैव हमारी सुरक्षा करते थे, तो क्या आपको हम कभी याद आते थे? या फिर ऐसे कि काकाश्री आपको याद है आपने कितनी सारी विपत्तियों से हमारी रक्षा की है, तो कौन कौन सी विपत्तियां आई हैं वो तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताएंगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते महाराज युधिष्ठिर ने कहा हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह से सदा हमारी माता तथा हम सब की समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की? आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विष्पान तथा अग्निदाह से बचाया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं अल्प आयु में ही पांडव की मृत्यु हो जाने से उनके छोटे छोटे पुत्र तथा विधवा स्त्री परिवार के गुरुजनों द्वारा, विशेष रूप से भीष्म देव तथा महात्मा विदुर द्वारा संरक्षण प्राप्त करते रहे। पांडवों की राजनीतिक स्थिति के कारण विदुर उनका न्यूनाधिक पक्षपात करते रहे। यद्यपि धृतराष्ट्र भी महाराज पांडव के छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेष्ट रहते थे, लेकिन वे
उन षड्यंत्रकारी दलों में से थे जो पांडवों के वंशजों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे और उनके स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का शासन बनाना चाहते थे। महाराज विदुर धृतराष्ट्र तथा उनके दल के इस षड्यंत्र को जानते थे, अतएव अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी सेवक होते हुए भी उन्हें उनकी यह महत्व आकांक्षा पसंद नहीं थी। अतः वे पांडवों एवं उनकी विधवा माता की सुरक्षा के प्रति अत्यंत ही सावधान रहते थे। इस प्रकार वे पांडवों के पक्षपाती थे और उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक चाहते थे। यद्यपि सामान्य दृष्टि से वे दोनों ही उन्हें प्रिय थे, वे अपने भतीजों के दोनों दलों के प्रति इस तरह समान वात्सल्य थे, फिर भी अपने चचेरे भाइयों के प्रति षड्यंत्र करने की नीति के लिए दुर्योधन को सदैव प्रताड़ित करते रहते थे और वे अपने अग्रज की आलोचना अपने पुत्रों को बढ़ावा देने की नीति के लिए करते रहते थे, किंतु साथ ही पांडवों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के प्रति सदैव सचेष्ट रहते थे। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी वो सब बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो विदुर जी अपने भतीजों को दुर्योधन इत्यादि के षड्यंत्रों से बचाते रहते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो सारे सदैव षड्यंत्र रचते रहते थे, प्लानिंग करते रहते थे कि किस तरह से इन पांडवों को मारकर राज्य हत्याया जाए, और धृतराष्ट्र भी सदैव उनका साथ देते थे। विदुर जी हालांकि पक्षपाती नहीं थे, वो दुर्योधन लोगों से भी प्यार करते थे, लेकिन क्योंकि दुर्योधन इत्यादि सदैव पांडवों की को हानि पहुंचाने की कोशिश करते रहते थे, इसलिए विदुर जी जो है वो सदैव दुर्योधन को और उनके पिताजी को बोलते थे कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना, यानी प्रताड़ित सदैव करते रहते थे और हमेशा पांडवों को संरक्षण प्रदान करते थे। कोई भी वो षड्यंत्र, क्योंकि विदुर जी के पास बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, वो जरा सी बात, मतलब जरा सी कोई बात होती थी ना, वो समझ जाते थे कि अभी ये होने वाला है, तो फिर फौरन से पांडवों को बताते थे कि इस तरह करो तो आप इनके इस चाल से बच जाओगे, तो सारे षड्यंत्रों से बचाते थे। या राजमहल के भीतर विदुर के लिए ये सारे कार्यकलाप उन्हें पांडवों का पक्षपाती घोषित करने वाले थे। सब लोग बोलते थे कि देखो ये पांडवों का पक्षपात करते हैं, ये पांडवों का, इस तरह वो कहते थे। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने विदुर के घर से दीर्घकालीन तीर्थाटन के लिए जाने के पूर्व के विगत इतिहास का उल्लेख किया है। ये कब की बातें बताई हैं? जब ये अभी तीर्थ स्थान में नहीं गए थे तब ये सारी बातें हो रही थी, वो हमेशा बचाते रहते थे उनको, तो उसके विषय में बताया है। तो महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाई कि वे कुरुक्षेत्र युद्ध जैसी घोर पारिवारिक दुर्घटना के बाद भी अपने बड़े बड़े भतीजों के प्रति कितने दयालु तथा पक्षपाती बने रहे, कि आज भी आप तो हमारे मतलब पक्षपाती हो ना आप, पहले तो चलो ये आज आप हमको आज आपको हमारी याद आ गई, कितने समय से आप नहीं थे, जब तक दुर्योधन यहाँ पर हस्तिनापुर में राज्य कर रहा था तब तो आप चले गए थे, आज हम बड़े हो गए हैं फिर भी आप हमारे ऊपर इतने स्नेही हो कि आज आप फिर से पुनः लौट आए। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या हुआ था। धृतराष्ट्र की नीति थी कि वह अपने भतीजों का शांतिपूर्ण ढंग से सफाया कर दे, अतएव उसने पुरोचन को आज्ञा दी कि वह वाराणवत में एक घर निर्मित करे, और जब वह घर बनकर तैयार हो गया तो धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार वहां कुछ काल तक रहे। जब सारे पांडव राजकुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में वहां जा रहे थे तो विदुर ने अत्यंत ही चालाकी से पांडवों को धृतराष्ट्र की भावी योजना की सूचना दी। इसका विशेष वर्णन महाभारत आदि पुरों में हुआ है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें सावधान किया। क्या बोला? ऐसा अस्त्र जो अस्पात इस पात या किसी अन्य धातु का ना बना हो वह इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे, किंतु जो यह जानता है वह कभी मारा नहीं जाता। मतलब आप देखो, यहाँ पे प्रोग्राम क्या बनाया जा रहा था कि एक लाक्षाग्रह बनाया गया था। लाक्षाग्रह मतलब जैसे हमारा घर बना होता है सीमेंट से, ईंटों से, रेती बजरी इत्यादि से बना होता है ना, वो लाक्ष्य से एक ऐसी चीज होती है जिसमें आग अगर एक तीली भी गिर जाती है तो पूरा पूरन से जल जाता है, लाक्ष्य से बना हुआ होता है। तो धृतराष्ट्र ने सोचा कि ऐसा लाक्षाग्रह बना के इन सारे पांडवों को मैं इधर भिजवा दूंगा और वहां पर बस आग लगा देंगे तो ये सारे मर जाएंगे। तो अब विदुर जी को पता चल गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, उनको पता चल गया था कि यहाँ पर पांडवों को मारने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन विदुर जी को अकेले में पांडवों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। अब मिलेंगे तो बताएंगे ना, ऐसे कैसे बता दें, तो फिर बता नहीं सके। फिर अब जा रहे थे, जब वो पांडव घर बिल्कुल बन गया, लाक्षाग्रह बिल्कुल कम्प्लीट होके बन गया, तो फिर विदुर जी ने बहुत ही सीक्रेट वर्ड्स में इनको बताया कि क्या होने वाला है। उन्होंने कहा, ऐसा अस्त्र जिसको इस पात या किसी अन्य धातु का ना बनाओ, मतलब वहां पर तुम्हें कुछ अस्त्र शस्त्र दिखेगा नहीं, लेकिन वो तो उतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे। मतलब वहां पर संभव है कि तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र ना दिखे लेकिन मृत्यु हो सकती है। लेकिन अगर जो जानता है वह कभी भी मारा नहीं जानता, मतलब उसको पता है कि इस तरह से मृत्यु हो सकती है, तो वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा ना बचने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने संकेत कर दिया कि पांडवों को वाणावत इसलिए भेजा जा रहा है कि उनका वध किया जा सके। इस तरह उन्होंने युधिष्ठिर को सचेत किया और कि वे नए आवास महल में अत्यंत सतर्क रहेंगे। आप जा तो रहे हो तो दिखेगा तो नहीं तुमको कुछ भी अस्त्र शस्त्र, लेकिन आपको खबरदार रहना है कि हो सकता है वहां पर आपकी मृत्यु की योजना बनाई जाए। उन्होंने अग्नि का भी संकेत किया और कहा कि अग्नि आत्मा का शमन नहीं कर सकती लेकिन भौतिक शरीर को नष्ट कर सकती है, किंतु जो आत्मा की रक्षा करता है वह जीवित रह सकता है। अब उन्होंने एक दूसरी बात भी बताई कि अग्नि जो है जब जंगल में लग जाती है तो भले ही वो आत्मा को मारती नहीं है लेकिन शरीर तो भस्म हो जाएगा ना, तो इसलिए जो आत्मा की रक्षा कर ले तो वो बच सकता है। तो उसने फिर साथ में, मतलब ये सारी बातें वो सबके सामने बता रहे थे, लेकिन ऐसा महाभारत में कहा गया मलेच्छ भाषा में वो बता रहे थे, और मलेच्छ भाषा केवल विदुर जी को और युधिष्ठिर महाराज को आती थी और दूसरों को नहीं आती थी, तो दूसरे समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने ये भी पूछा कि देखो युधिष्ठिर, अगर जंगल में अग्नि लग जाती है तो सारे जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं, परंतु चूहा बच जाता है क्योंकि चूहा बिल में रहता है और बिल के द्वारा वो सुरंग खोद कर दूसरे साइड से निकल जाता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो बच जाता है। फिर इस संकेत से वो ये बताना चाहते थे कि क्योंकि तुम लाक्षाग्रह में जा रहे हो, वहां पर अग्नि लगेगी, परंतु मैं कोई ऐसा कारीगर भेजूंगा जो कि सुरंग खींच खोद के दे देगा आप लोगों को और उस सुरंग से तुम सुरक्षित रीति से निकल जाना। आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर तथा विदुर के ऐसे वार्तालाप को कुंती नहीं समझ पाई, अतएव जब उन्होंने अपने पुत्र से इस वार्तालाप का सारांश जानना चाहा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि विदुर की बातों से लग रहा है कि हम लोग जहाँ रहने जा रहे हैं वहाँ अग्नि लगने की आकांक्षा है। बाद में विदुर अपना वेश बदल कर पांडवों के पास पहुंचे और उन्होंने सूचित किया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगाएगा। यह धृतराष्ट्र का षड्यंत्र था और पांडव अपनी माता समेत एक साथ मर जाएं। उनके सचेत करने से पांडव पृथ्वी के नीचे बनी सुरंग के द्वारा बच निकले, किंतु उनके बचने का समाचार धृतराष्ट्र को ज्ञात ना हो सका। यहाँ तक कि अग्नि लगने के बाद सारे कौरव पांडवों की मृत्यु के प्रति इतने आश्वस्त हो गए थे कि धृतराष्ट्र ने परम प्रसन्नता पूर्वक उनके अंतिम संस्कार संपन्न कर डाले और शोक की अवधि में महल के सारे सदस्य शोक मग्न थे, किंतु विदुर ने शोक नहीं मनाया क्योंकि उन्हें पता था कि सारे पांडव कहीं पर जीवित हैं। अब क्या हुआ था कि जब विदुर ने उन्हें बताया कि शुक्ल पक्ष की एकादशी को यहाँ पर आग लगने वाली है, तो उस लोग आग लगाएं उससे पहले ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हम ही खुद ही आग लगाएं, हमें तो पता नहीं चलेगा ना, वो लगाएंगे तो फिर तो ये लाक्षाग्रह तो फौरन से भड़क जाएगा ना, जल जाएगा, तो हम उससे पहले ही आग नहीं लगा देंगे और खुद ही सुरंग निकाली थी बहुत बड़ी, वहां से सुरक्षित रीति से निकल जाएंगे। और वो सुरक्षित रीति से निकल गए और एक कचक्र गांव में चले गए। वहां पर उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन देव इच्छा से वहां पर उस लाक्षाग्रह में एक बेलनी और उसके 5 बच्चे बैठे हुए थे। उसके 5 पुत्र थे, वो भी यंग थे, ऐसे शराब पी के बैठे हुए थे, तो वो उनको पता नहीं था, युधिष्ठिर महाराज को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन वो सब जल कर मर गए। तो अब जब मर गए जल के, तो फिर बाद में उनकी हस्तियां इत्यादि मिली, तो सब लोग इतने आश्वस्त हो गए कि वाह, सारे पांडव भी मर गए, कुंती भी मर गई, सारे मतलब हमारे जो राज्य प्राप्त करने के लिए जो कठिनाइयां थी, दुर्योधन लोगों ने सोचा ये सब तो मर गए इतना आसानी से। और फिर उन्होंने शोक सभा रखी। अब जब शोक सभा रखी तो सारे लोग आए, भीष्म पितामह भी आए, लेकिन विदुर को तो पता था कि नहीं, ये मरे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं वो निकल गए होंगे सुरक्षित रीति से। तो भीष्म पितामह ने विदुर से पूछा, तुम जानते हो ना कि वो जिंदा है, तुम जानते हो तभी तो तुम शोक सभा में नहीं आए, तो तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो वो कहां पर है। तो फिर विदुर जी ने उन्हें बताया था, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत शुभ चिंतक थे पांडवों के, फिर उन्हें बताया था कि हाँ वो सुरक्षित हैं, लेकिन मुझे खुद खबर नहीं है वो किधर हैं। बहरहाल इस तरह से वो कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से पांडवों की संरक्षा करते रहते थे, उनको बचाते रहते थे। तो यहाँ पर आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु विदुर ने शोक नहीं मनाया क्योंकि उन्हें पता था कि सारे पांडव कहीं पर जीवित हैं। विपत्तियों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं और उन सबों में विदुर ने एक ओर जहां पांडवों को संरक्षण प्रदान किया, तो दूसरी ओर वे अपने भाई धृतराष्ट्र को ऐसे षड्यंत्रकारी नीतियों से रोकते थे, इसलिए वे पांडवों के प्रति उसी तरह पक्षपात करते थे जिस प्रकार पक्षी अपने पंख से अंडों की रक्षा करते थे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनकी सुरक्षा करते थे, इसीलिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने कहा है, पक्षच्छाया समेधितान, जिस प्रकार पक्षी अपने अंडों की सुरक्षा करता है उसी प्रकार सदैव आप हमारी सुरक्षा प्रदान करते थे। अब दूसरी बात उनसे पूछ रहे हैं कि आप तो यहाँ से चले गए थे, वहां पर जहाँ तीर्थ यात्रा करने के लिए आप चले गए, तो वहां पर आप रहते कैसे थे, आपने अपना जीवन निर्वाह कैसे किया, पूछते हैं श्लोक नंबर 9 में, कया वृत्या वटितं वा चरत्तिक्षति मण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि ह भूतले, कया वृत्या वटितं वा चरत्तिक्षति मण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि ह भूतले, कया वृत्या व्रतितं वर् चरत्पीक्षति मण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि ह भूतले। अर्थात कया वृत्या, मतलब किन साधनों से, आप इतना टाइम 35 साल तक आप नहीं थे, तो इतना टाइम किन साधनों से वर्तितम, वर्तितम का मतलब होता है जी कैसे रहते, खा पी के क्या रहे थे, वहां पर आपने क्या खाया क्या पिया, मतलब आपको कुछ प्रसाद वसाद मिल रहा था। अब इतने समय से वो थे नहीं, तो युधिष्ठिर महाराज को पता भी नहीं था वो कहाँ थे, अगर उनको पता होता तो शायद वो उनके लिए भोजन इत्यादि का कुछ प्रबंध करते थे, लेकिन ये पूछना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत प्रेम करते ना काकाश्री से, तो पूछ रहे कया वृत्या वर्तितम वा, आपने वहां पर क्या खाया, चरदी क्षतिमंडल, क्षतिमंडल मतलब पृथ्वी पर, कहाँ कहाँ तो आप चरत भी यानी विचरण करते रहे, तो क्या खाते होंगे? तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि, तीर्थ स्थानों में, प्रमुख पवित्र स्थानों में सेवितानि, आपने वहां पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं की होंगी, आपके द्वारा वो सब स्थान सेवित होंगे इह भूतले, इस लोक में। तो पूछ रहे हैं कि इस संसार में आपने न जाने इतने सालों में कितनी कितनी जगहों पर जाकर सेवा की होगी, अब आप क्या आपको कोई ख्याल रखता था, आपको कोई प्रसाद इत्यादि देता था, आप खाते क्या थे, आपने अपनी जीविका को चलाने के लिए क्या किया? क्योंकि विदुर महाराज इतने दुर्बल हो गए थे, उनका शरीर इतना क्षीण हो, तेज बढ़ गया था क्योंकि तपस्या की थी, साधना की थी, तेज बढ़ गया था परंतु शरीर बहुत कमजोर हो गया था। तो पूछ रहे थे उनसे क्या आपको सही तरह से भोजन इत्यादि मिल रहा था। अरे भगवान, इन सब जगह मतलब जितनी भी संसार में जगह है वहां पर समस्त जीवों की समस्त आवश्यकताएं पूरी कर ही देते हैं। जिस प्रकार माता पिता को अपने बच्चों की कितनी फिक्र होती है, उसी प्रकार भगवान को भी बहुत चिंता होती है कि मेरे इस बच्चे को मुझे भोजन इत्यादि देना है, तो हमें इसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। हम जब भगवान की भक्ति करने के लिए निकलते हैं तो भगवान अवश्य हमारी सहायता करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी केयर करते हैं। तो यहाँ पर अनुवाद देखिए, पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई, अपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं विदुर राजमहल से बाहर इसलिए चले गए थे क्योंकि वे अपने को घरेलू मामले से विशेषतया राजनीतिक षड्यंत्रों से विलग करना चाह रहे थे। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, दुर्योधन उन्हें शूद्राणी पुत्र कहकर उनका एक तरह से अपमान कर चुका था। यद्यपि किसी की पितामही यानी दादी के विषय में अनाशनाप बातें करना कोई नई बात नहीं है, विदुर की माता शूद्राणी होते हुए भी दुर्योधन की पितामही लगती थी और कभी कभी दादी तथा नातियों के बीच ऐसा मजाक चलता है, क्योंकि यह चिंताकशी एक वास्तविकता थी, अतएव विदुर को बुरी लगने वाली थी, फलतः इस प्रत्यक्ष अपमान के रूप में ग्रहण किया, इसको प्रत्यक्ष अपमान के रूप में ग्रहण किया गया था। फलस्वरूप विदुर ने तय किया कि अपना पैतृक महल त्याग कर विरक्त जीवन बिताएंगे। यह तैयारी वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह जब मैंने कल बताया था कि विदुर ने जब धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया था कि अब तो कृष्ण भी आए थे, भगवान भी आए थे, लेकिन दुर्योधन ने कह दिया कि अब एक सुई की नोक के बराबर भी उनको भूमि नहीं देंगे, तो फिर क्या करना चाहिए विदुर, अभी तो वो युद्ध करेंगे। तब विदुर ने उन्हें बताया था कि ये दुर्योधन जो है ना वो फसाद की जड़ है, इसको घर से निकालो बाहर। तब दुर्योधन ने ये कहा था कि तुम दासी के पुत्र हो, एक शूद्राणी के पुत्र हो, और एक शूद्राणी के पुत्र को महल के मामलात में दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत है, तुम शूद्राणी के पुत्र हो तो तुम निकल जाओ यहाँ से। तो जब भी इस तरह से विदुर जी को बोला था ना, तो विदुर जी को बहुत दुख हुआ था कि इसने मुझे मतलब कभी भी, भले ही वो दासी के पुत्र थे, लेकिन महल में कभी भी भीष्म पितामह ने, धृतराष्ट्र ने, पांडव ने उनको अपने बच्चों की तरह ही प्यार किया था, कभी भी उनको ये एहसास नहीं दिलाया था कि वो शूद्र पुत्र हैं या शूद्राणी के पुत्र हैं। लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने उन्हें कहा था, फिर तो उन्होंने उनकी बहुत विरक्ति हो गई थी कि अब ऐसे लोग के साथ क्या रहना, मैं इसके साथ रहूंगा ही नहीं, मैं चला जाऊंगा और वहां पर विरक्त जीवन गुजारूंगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आना चाहिए जब भौतिक बंधनों से उसकी विरक्ति हो जाए। हर वक्त ये मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला हुआ है कि पूरा जीवन भौतिक आसक्ति में गुजारता जाए, बच्चों में, उनके बच्चों में, सारी जिंदगी बस इसी तरह से जीना है, कुछ अपने जीवन का लाभ नहीं लेना है, मनुष्य बने हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य यूं कुत्ते बिल्लियों की तरह अपने बच्चों को संभालते हुए गुजारने के लिए नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें याद दिला रहे हैं कि मनुष्य जीवन में चार आश्रम होते हैं। शुरू के 20-25 साल ब्रह्मचारी आश्रम होता है, जिसमें मनुष्य को शास्त्र अध्ययन करनी होती है, शिक्षा प्राप्त करनी होती है। 25 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन बिताता है वो, उनकी संतान उत्पन्न होती है, उनका विवाह इत्यादि करवाते हैं, और उसके बाद उसे वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। वानप्रस्थ में क्या होता है, विरक्ति हो जाती है, अपने परिवार में आसक्ति नहीं होती, तो ये आश्रम अवश्य स्वीकार करने चाहिए। यही वर्ण आश्रम धर्म के द्वारा ही हम अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह तैयारी वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है, अर्थात ऐसा विरक्त जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन किया जाता है। भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग जैसे तीर्थ स्थलों में अनेक महान भक्त हैं, और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं उनके लिए वे मुफ्त लंगर चलाते हैं। महाराज युधिष्ठिर यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या विदुर अपना जीवन निर्वाह ऐसे लंगरों से कर रहे थे। मतलब अभी वो बता रहे हैं कि आपने क्या खा क्या रहे थे आप वहाँ पर, आप अपना जीवन कैसे निर्वाह कर रहे थे। तो श्रील रूपा जी पूछ रहे हैं कि क्या जो लंगर इत्यादि वो वहाँ पर बांटते हैं उससे वो उससे खाते थे या क्या खाते थे, वो ऐसे पूछ रहे। आगे उत्तर तो विदुर जी बाद में देंगे। आगे वो तीसरी बात उनसे करते हैं कि भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गधाभृता भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्तेन गधाभृता भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्तेन गधाभृता। वे कहते हैं भवत विधा भागवता, भवत मतलब आप, विधा मतलब जैसे, भागवता मतलब भक्त, क्योंकि आप इतने शुद्ध भक्त हो, आप जैसे भक्त जब तीर्थ भूता स्वयं विभो, जब तीर्थ यात्रा या पवित्र तीर्थों की यात्रा के लिए जाते हैं स्वयं विभो, क्योंकि आप तो इतने शुद्ध हैं, इतने पवित्र हैं, आप जैसे भक्त जब तीर्थों में घूमते हैं तो उससे क्या होता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों का ही कल्याण होता है। वास्तव में तीर्थी कुर्वन्ति यानी तीर्थ स्थान बनाते हो तीर्थानि, वास्तव में तीर्थों के अंदर पवित्रता आप जैसे शुद्ध भक्तों के कारण ही जाती है। स्वंतस्थेन हृदय, क्योंकि आपका जो अंतःकरण है, आपका जो हृदय है, उसमें स्थान है किसका, गधाभृता भगवान का, क्योंकि आपके हृदय में भगवान विश्राम करते हैं, भगवान का स्थान है आपके हृदय में, तो उनके अंतःकरण में सदैव गदाभृता गदाधर भगवान। गदाधर भगवान क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि गया जी वहाँ पर गदाधर भगवान का स्वरूप रहता है। अब गया जी को महान तीर्थ यात्रा कहा जाता है, गया जी में जब पिंडदान आदि किया जाता है तो जो हमारे पितृगण होते हैं उनका कल्याण होता है, उनकी सद्गति होती है, तो बहुत सारे लोग पिंडदान करने के लिए या अपने अपराधों को साफ करने के लिए गया जी में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विदुर जी को युधिष्ठिर महाराज कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। वास्तव में विदुर जी के लिए ये बात बिल्कुल फैक्ट थी कि तीर्थों को भी लाभ पहुँचता है जब शुद्ध भक्त वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर स्नान करने जाते हैं। जब गंगा जी तीर्थों में सबसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है गंगा जी, तो जब भागीरथ जी गंगा जी की उपासना कर रहे थे, उनके लिए तपस्या कर रहे थे कि आप आइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेरे पूर्वज हैं जिनका कल्याण नहीं हुआ है, उनका उद्धार करने के लिए आपको संसार में आना पड़ेगा। तब गंगा जी ने भागीरथ जी को साफ मना कर दिया, बोला मैं तो संसार में आऊंगी, फिर सारे अपराधी आएंगे, मेरे में अंदर स्नान करेंगे, मुझे मलिन कर देंगे, मुझे अपवित्र कर देंगे, मैं नहीं आ रही हूँ। साफ मना कर दिया उसको। और दूसरी बात ये भी कही कि मेरा इतना वेग है कि मैं संसार में आऊंगी तो वो जो पृथ्वी है वो मेरे इस वेग को नहीं स्वीकार कर सकेगी। तब फिर भागीरथ जी ने शिव जी को प्रसन्न करके उनको इस बात के लिए राजी किया कि आप गंगा जी को अपने सिर पर धारण कीजिए। और गंगा जी ने कहा चलो ठीक है, मैं शिव जी के सिर पर तो जाऊंगी, परंतु फिर भागीरथ महाराज ने गंगा जी को यह आश्वस्त किया कि आप चिंता मत कीजिए, भले ही आपके अंदर कितने ही पापी स्नान करेंगे और उसके बाद जो शुद्ध भक्त है ना भगवान के, वो भी आएंगे आपके पास आपका स्नान करने के लिए। जिनकी ऐसे शुद्ध भक्त जिनके अंदर कोई काम वासना नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है, और वो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपका दर्शन करने के लिए आते हैं, तो जब वो आपके अंदर स्नान करेंगे तो आप पुनः पवित्र हो जाओगी। तो गंगा जी बहुत ही संतुष्ट हुई और उसके बाद उन्होंने संसार में आना स्वीकार किया। वास्तव में ये वास्तविकता है कि ये गंगा जी भले कितनी पवित्र है, लेकिन उसमें स्नान करने के बाद ही जीव पवित्र होता है। इसलिए भक्तगण कहते हैं गंगा रे पश्यति पावन दर्शन पवित्र करो हे तुम्हारा गुण। ये वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्तों का गुण है कि उनको स्पर्श करने की भी जरूरत नहीं है। जिस प्रकार गंगा को दूर से देखते रहेंगे तो हमें पवित्रता नहीं आएगी, लेकिन शुद्ध भक्तों का केवल दर्शन मात्र से हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। और तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुम्हारे हृदय में तो सदा गोविंद आकर विश्राम करते हैं। विदुर जी के लिए तो यह एकदम सत्य घटना है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे, दुर्योधन ने भगवान को कहा था कृष्ण तुम्हारे लिए 56 भोजन तैयार है, लेकिन भगवान ने कहा नहीं दुर्योधन, भोजन तो मैं विदुर जी के यहाँ पर ही करूँगा। और जब भगवान विदुर जी के घर पे दोपहर का प्रसाद खा लिए तो उसके बाद भगवान को बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि बहुत थके भगवान आए थे विराट नगर से हस्तिनापुर तक। तो विदुर जी से बातें कर रहे थे, भगवान के चरणों को विदुर जी ने अपने गोद में रखा था और ऐसे भगवान के चरणों को सहला रहे थे, तो ऐसे करते करते उनको नींद आ गई थी भगवान को। तब अभी तृतीय सिकंद में ये कथा आएगी जिसमें बताएंगे सुखदेव गोस्वामी सहस्य शेषण चरणे प्रध्यानम कि जिनके जो भगवान के चरणों के लिए तकिया है, मतलब विदुर जी जो भगवान के पैरों के लिए तकिए के समान है। क्योंकि जिस प्रकार हम कोई कोई लोग जो बड़े होते हैं वो अपने सिर को भी तकिए पे रखते हैं और चरणों के पास भी तकिया रखते हैं, तो ये कितना बड़ा सौभाग्य विदुर जी का कि भगवान अपने चरणों को विदुर जी के गोद में रखकर सोते थे। तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, भगवान के बहुत ही परम शुद्ध और परम शुद्ध भक्त थे। और इसीलिए कहा है यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता, क्योंकि आपके हृदय में तो सदैव भगवान का निवास रहता है, इसलिए आपके जाने से तो तीर्थों का ही कल्याण हो गया था और जितने जितने तीर्थों में आप गए होंगे वो सब प्रसन्न हो गए होंगे आपके दर्शन करके। अनुवाद, हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाले हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है। भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है, विदुर जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है और भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं, वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के लिए हैं। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहाँ रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यावहारिक जीवन में उतारे और इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम जाने के लिए तैयार करे। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों में दर्शन करना नहीं होता है। उसे विदुर जैसे प्रतिनिधियों को खोजना चाहिए, जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं रहती। भगवान सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहे हैं, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते। वे तो भगवान की असली सेवा में विशेषतया श्रवण तथा कीर्तन में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त अधिकारियों से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। महामुनि व्यास देव ने नारद से सुना था और तब उन्होंने लिख कर कीर्तन किया। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से उसका वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम की यही विधि है। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं और तीर्थ स्थलों का नाम उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान से दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो बात ही क्या, जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा है, जो ऐसे पवित्र स्थानों की प्रसिद्धि की परवाह ना करते हुए अपना धंधा चलाता है। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी हमें ये समझा रहे हैं कि तीर्थ वास्तव में वो स्थान नहीं होता है जिसका नाम हो कि भाई ये तीर्थ स्थान है, यहाँ पर आइए आप शुद्ध हो जाओगे। वास्तव में तीर्थ का मतलब यह है कि आप ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करो, वहां पर जाकर उनसे श्रवण करो, उनका उनसे उनके साथ मिलकर कीर्तन करो, भगवान की लीलाओं को उनके साथ मिलकर आप आस्वादन करो। जब इस रसास्वादन होता है, केवल जाकर स्नान करना या मंदिर में दर्शन करना ये तीर्थ नहीं होता है। वास्तव में तीर्थ का मतलब है आपका हृदय पवित्र होना चाहिए। लेकिन श्री प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं, जो ऐसे पवित्र स्थानों की प्रसिद्धि की परवाह ना करते हुए अपना धंधा चलाते हैं, वो ये नहीं देखते कि कितना पवित्र स्थान है, वृंदावन है, गंगा या गंगोत्री है, ऋषिकेश है, क्या वो अपने कार्य करते रहते हैं वहां पर भी उल्टे सीधे। तो ऐसा मत सोचना कि ऐसी जगह पर जाकर आप पवित्र हो जाओगे, जब तक कि आप किसी शुद्ध भक्त के साथ भेंट नहीं करते हो, वहां पर भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करते हो, कीर्तन नहीं करते हो, भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करते हो, तब तक आपकी तीर्थ यात्रा जो है वो सफल नहीं होती है। इसलिए हमें अवश्य श्री प्रभुपाद जी ने ये बताया है कि ऐसे स्थानों में जाकर शुद्ध भक्तों को खोजना चाहिए और उनकी संगति में रहकर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में वो तीर्थ इसी तरह हैं, इसीलिए हैं क्योंकि वहां पर भक्त हैं। अगर वहां पर भक्त नहीं है तो तीर्थ का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, वो तीर्थों को तीर्थ बनाया ही आप जैसे शुद्ध भक्तों ने है, क्योंकि स्वांत स्थिर गदाधर, भगवान तो आपके हृदय में है, वास्तव में जो शुद्ध होने के लिए व्यक्ति आते हैं, जब तक उनका आपके साथ संग नहीं होता है, शुद्ध भक्तों का संग उनको प्राप्त नहीं होता है, तब तक भगवान के दर्शन भी नहीं होंगे, क्योंकि भगवान उस मंदिर में नहीं आपके हृदय में रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा। आगे भी देखेंगे कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज अपनी कृतज्ञता विदुर जी को बताते हैं और फिर विदुर जी किस प्रकार धृतराष्ट्र को उपदेश देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा।